छवि सिंघानिया के जाने के बाद गौरवी जी और कबीर आरव से मिलने हॉस्पिटल आए हुए थे। वो दोनों कबीर से बात कर रहे थे तभी साक्षी वहां पहुंच गई। अयान ने उसे भी आरव के होश में आने की बात बता दी थी, इसलिए वो तुरंत वहां आ गई। साक्षी को अचानक वहां देखकर आरव और आयु दोनों ही खुश हुए। साक्षी अपना लाया बुके आरव के पास रखते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी होश आ गया, वरना तुम्हारी मिसेस खुराना तुम्हारे चक्कर में रोज बेहोश होकर गिरती रहती। अब खुद का भी अच्छे से ध्यान रखो और इसका भी। साक्षी ने जो कहा था वो सच था। जब से आरव का एक्सीडेंट हुआ था आयु की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। आरव ने आयु की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, हाँ वो तो मुझे इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है, लगता है इसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है और घर बैठकर आराम करने का मन कर रहा है। आयु अच्छे से जानती थी कि आरव ने हॉस्पिटल आने से मना किया तो वो अपना काम चाहकर भी नहीं कर पाएगी। आरव की बात सुनकर आयु झट से बोली, यहाँ सब मेरी बात क्यों कर रहे हैं, आरव को होश आया है काफी दिनों बाद, आप उससे बात करने आई हैं तो उसी के बारे में बात कीजिए ना साक्षी दी। चलिए आरव को छोड़ते हैं, ये बताइए कि आपको अयान ने बताया ना कि आरव को होश आ गया है। अयान का नाम सुनकर साक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गौरवी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, तुम और अयान एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या, गौरवी जी ने सीधे सीधे पूछा, जिस पर साक्षी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम बस अच्छे दोस्त हैं, साक्षी ने जवाब में कहा। हाँ दादी, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं जो थोड़े टाइम बाद एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, आरव झट से बोला, जिस पर साक्षी उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। आरव के होश में आते ही वहां की उदासी अपने आप खत्म हो गई थी। पहले आरव के रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था और अब वहीं सबके बात करने की तेज आवाजें आ रही थी। आरव से कुछ देर बात करने के बाद साक्षी अयान से मिलने उसके केबिन में पहुंची। साक्षी को देखते ही अयान अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, भाई से मिल ली हो ना आप। हाँ, साक्षी ने हामी भरी और अयान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और सब मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तुमने आयु को हमारे बारे में बता दिया है क्या, आई मीन वो हम दोनों की रिलेशन के बारे में, साक्षी हिचकिचाते हुए बोल रही थी तभी अयान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। हाँ तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है, कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही है, मैं भी आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ साक्षी, एंड आई थिंक हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। शादी का नाम सुनकर साक्षी के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव थे। उसने अयान से अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, शादी भी कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी हमारे रिलेशन को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, एक दूसरे को जानते समझते हैं, थोड़ा टाइम दो, इस बारे में बाद में सोचेंगे। अयान समझ सकता था कि साक्षी को टाइम क्यों चाहिए था, भले ही साक्षी को इस बारे में पता ना हो लेकिन अयान उसकी बेटी के बारे में जानता था। अयान को पूरा सच नहीं पता था और ना ही उसे किसी बात से फर्क पड़ता था। साक्षी उनके रिश्ते को टाइम देना चाहती थी तो अयान के पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। साक्षी जानती थी कि अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो अयान उससे शादी या बाकी चीज़ों के बारे में बात करेगा। साक्षी अपनी चेयर से उठाते हुए बोली, ठीक है हम बाद में मिलते हैं, अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। साक्षी उठकर जाने ही वाली थी कि तभी अयान उसके पीछे आया और साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, कब तक आप मुझे टालती रहेंगी साक्षी, मैंने आपको कह दिया कि मुझे आपके पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई प्रॉमिस मैं आपको इतना ही प्यार करूंगा। साक्षी अयान की तरफ पलटी और अपना हाथ उसके हाथ से अलग करते हुए कहा, मैंने कहा ना अयान मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं तुम्हें सब सच नहीं बता पाऊंगी, भले ही तुम्हें मेरे पास्ट से कोई फर्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे पड़ता है। साक्षी के बार बार मना करने पर अयान को थोड़ा गुस्सा आने लगा, फिर भी वो रिक्वेस्टिंग वे में बोला, अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है तो प्लीज सब सच बता दीजिए, मुझसे अब और सस्पेंस में नहीं रहा जाता है, आप इसीलिए मुझसे शादी नहीं कर रही ना, क्योंकि आपकी पहले से ही एक बेटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे एक बाप का प्यार, बोलते हुए अयान रुक गया। उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने साक्षी के सामने उस बात को रख दिया था जो आरव ने उसे बताई थी। साक्षी हैरानी से अयान की तरफ देख रही थी, वो जानती भी नहीं थी कि अयान को उसका सच पता होगा। साक्षी की आंखें नम होने लगी थी और उसने भरी आवाज में पूछा, तुमने अभी अभी बेटी का नाम लिया, मतलब तुम सब सच जानते थे, कब से पता है तुम्हें अयान, और तुम मुझे धोखे में रख रहे थे। साक्षी को इस वक्त अयान पर गुस्सा आ रहा था इसलिए वो वहां से जाने लगी। साक्षी जाते हुए बोली, लिसन अयान, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, आई नीड सम टाइम। साक्षी प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बेटी से, और देखिए सच जानने के बाद भी मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज बता दीजिए कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। साक्षी को मनाते हुए अयान उसके पीछे आ रहा था। साक्षी ने अयान की एक नहीं सुनी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन साक्षी नहीं रुकी, वो वहीं परेशान हालत में पार्किंग एरिया में खड़ा था। अब सिर्फ भाई ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा भी क्या हो गया साक्षी के साथ जो वो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है? बोल तो दिया मुझे नहीं फर्क पड़ता, फिर भी भाई को सब पता होगा, अब तो वही मुझे सच बताएंगे, अयान ने खुद से कहा और फिर वहां से आरव से बात करने के लिए अंदर आने लगा। अयान और साक्षी बातें कर रहे थे, जहां बातों बातों में अयान के मुंह से साक्षी की बेटी का जिक्र हो गया था। इससे साक्षी को पता चला गया कि अयान को उसके पास्ट के बारे में काफी हद तक पता है। साक्षी नाराज होकर वहां से चली गई। ऐसे में आरव ही अयान की हेल्प कर सकता था। आरव से हेल्प के लिए अयान उसके रूम में आया। उसने देखा अभी तक गौरवी जी, आयु और कबीर आरव के पास ही बैठे थे। उन सबके सामने अयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अयान का चेहरा देखते ही आरव सब समझ गया। उसने अयान की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी बहुत ही जल्दी नाराज हो जाती है, इसलिए तुम्हें उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना होगा। आपको कैसे पता चला साक्षी मुझसे गुस्सा होकर चली गई? अयान ने हैरानी से पूछा। आरव उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले आयु बीच में बोल पड़ी, आरव क्या, ये तो मैं भी बता सकती हूँ। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, साक्षी दीदी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास गई थी, तो जरूर तुम दोनों के बीच में कोई बहस या लड़ाई हो गई होगी। मतलब तुम तीनों के अलावा यहाँ सिर्फ मैं हूँ जिसे नहीं पता कि तुम साक्षी को डेट कर रहे हो? तुम अपनी दादी को भूल कैसे सकते हो अयान? गौरवी जी ने थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा। अयान ने गौरवी जी की तरफ देखा और फिर कंधे उठाकर बोला, बताने को तो आपको भी बता सकता था, लेकिन जब तक वो मुझे लेकर कमिटेड नहीं हो जाती कोई फायदा नहीं है। भाई मुझे अकेले में बात करनी है। तुमसे पहले यहाँ लाइन में मैं लगा हूँ, मेरे बाद तुम बात कर सकते हो, कबीर ने बीच में बोलते हुए कहा। कबीर और अयान कोई डिसीजन लेते उससे पहले आयु ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम दोनों इसकी वाइफ नहीं हो, पहले मेरा हक बनता है, मैं अकेले में बात करूंगी, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है और तुम दोनों हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। तुम तीनों ही आपस में समझौता कर लो, लगता है मेरी बारी नहीं आने वाली है, गौरवी जी बोली।
अयान, आयु और कबीर ने इस पर आगे बहस नहीं की और उसने सारा फैसला आरव पर ही छोड़ दिया था। वो तीनों उम्मीद भरी नजरों से आरव की तरफ देख रहे थे। आरव ने बोरियत भरे लहजे में कहा, हरदयार, मैं बीमार हूँ और तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हो। जिसको बात करनी है वो अपने आप ही डिसाइड कर लो, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, और तुम तीनों मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर मुझे और थका रहे हो। आरव का जवाब सुनकर आयु ने कहा, ठीक है फिर, हो गया डिसाइड, मैं आरव के पास रुकने वाली हूँ। हाँ रुक जाना, लेकिन मुझे पहले कबीर से बात करनी है, आरव ने बोला। इनडायरेक्टली उसने अपना डिसीजन बता दिया था। कबीर ही था जो उसके पीछे क्या हुआ था उसके बारे में सब कुछ सही तरीके से उसे बता सकता था। आरव का डिसीजन सुनने के बाद कबीर के फेस पर विक्ट्री स्माइल थी। उसने अयान और आयु को रूम के बाहर जाने के लिए कहा। गौरवी जी को भी वहां आए हुए ज्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए वो भी ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकती थी। ठीक है फिर मैं ड्राइवर के साथ घर चली जाऊंगी, तुम लोग मेरे बच्चे का ध्यान रखना और ऐसे उसके सिर पर बैठकर उस पर कोई प्रेशर मत डालना, गौरवी जी ने कहा और फिर आरव के फोरहेड पर किस करके वहां से चली गई। गौरवी जी के साथ ही अयान और आयु भी रूम से बाहर आ गए थे। उन सब के जाते ही आरव ने सीरियस चेहरे के साथ कबीर की तरफ देखा और धीरे से कहा, तो तुमने अब्बास को मार दिया है? हाँ मुझे ऐसा करना ही पड़ा, कबीर ने सीधे सीधे जवाब दिया। अब्बास की मौत का सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने आगे कहा, चलो जो मैंने प्लान किया था वो तुमने कर दिया, अच्छा हुआ मर गया, वरना पता नहीं उस फैज खान के साथ मिलकर उल्टे सीधे क्या कुछ प्लान करता रहता। वैसे फैज के क्या अपडेट है? काफी शांत है वो, अब्बास के मरने के बाद से कोई हलचल नहीं हुई। हाँ पहले आपके एक्सीडेंट के बाद खान ने एक समझौते की मीटिंग रखने का सोचा था, लेकिन अब्बास वहां नहीं आया। अच्छा हुआ वो वहां पर नहीं आया, वरना मुझे झूठा समझौता करने का दिखावा करना पड़ता। आगे मिस्टर लूठरा संभाल लेंगे, उन्होंने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कबीर ने आरव को सब कुछ बता दिया था। आरव ने उसकी बात पर हामे सिर हिलाया। फिर कबीर एकटक आरव के चेहरे को देख रहा था। उसके माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी और पैर पर भी प्लास्टर था। कुछ देर चुप रहने के बाद कबीर बोला, आपको बस एक ऑर्डर देने की जरूरत थी, इसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो तुम्हें समझ आ गया कि मैंने ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया था? आरव ने पूछा, जिस पर कबीर ने जवाब में हामे सिर हिला दिया। आरव आगे बोला, कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से जानता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पीछे से तुम सब कुछ संभालने के लिए हो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मिसेस खुराना ठीक नहीं है, वो कुछ बता नहीं रही, लेकिन उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो घबरा गई थी। हाँ वो काफ़ी डर गई थी, जब से आप टेम्प्ररी कोमा में थे एक पल के लिए भी आपके पास से उठने के लिए तैयार नहीं थी, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी और उन्हें हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, बार बार बेहोश हो रही हैं। अयान ने संभाल लिया था, अब आपको होश आ गया है तो उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कबीर ने आयु के बारे में भी आरव को बता दिया। वो आरव के हर एक सवाल का शांति से जवाब दे रहा था। आरव ने आगे पूछा, क्या कुछ और भी है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? आई मीन, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ और भी है जो तुम बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ बताना तो चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आपकी वाइफ एक काबिल डॉक्टर है, फिर मुझे समझ नहीं आता कि अयान ने उस दिन आपके एक्सीडेंट के टाइम ऑपरेशन थिएटर में उन्हें क्यों नहीं आने दिया। जब साक्षी नाम का एक्सीडेंट हुआ था तब भी उसने उन्हें अंदर नहीं आने दिया था और काफी रूडली बात की थी। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा है जो अयान छुपा रहा है। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि अनुष्का की मौत से जुड़ा हुआ है। हमने फुटेज देखी थी, वो बिल्कुल ठीक थी। जो भी हुआ था वो उस ऑपरेशन थिएटर में ही हुआ था और उसका सच या तो अयान जानता है या आपकी वाइफ। मुझे इतने दिनों से यही बात परेशान कर रही थी। उन्होंने दादी को ऑपरेट किया था, तब भी अयान काफी घबराया हुआ था। वो उसका सीनियर डॉक्टर है, उसे उन पर हमसे ज्यादा यकीन होना चाहिए, पर यकीन नहीं है उन्हें। कबीर के दिल में इतने दिनों से जो भी चल रहा था उसने एक सांस में आरव को बता दिया। अब इसके बारे में तो अयान ही बता सकता है। सुनो, अभी इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, पहले मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं अयान से बात करूंगा। वो वैसे भी साक्षी की वजह से परेशान है और ये मैटर इतना भी जरूरी नहीं है कि इसके लिए अयान या आयु में से किसी को परेशान किया जाए। हम इसके बारे में पता लगा लेंगे, आरव ने जवाब दिया। भले ही उसने कबीर को इस मामले में कुछ ना करने के लिए कहा हो, लेकिन सारी बात जानने के बाद उसे दिल की दिल में आयु के लिए टेंशन हो रही थी।